आप सब लोगों का श्री गिरिराज गोवर्धन पे स्वागत है। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि साक्षात विष्णु स्वरूप हैं श्री गिरिराज गोवर्धन, हरिदास वर्य हैं खूबियों के अनुसार, और इनकी उत्पत्ति भगवान के छाती से गौलोक धाम में हुई थी। गौलोक धाम में जब भगवान के सामने राधा रानी ने इच्छा प्रकट की कि अभी हमें इतना सारा आपने निर्माण किया है कुंज निकुंज, तो एक स्थान ऐसा निर्माण करो जो हम बहुत ही उत्कट अंतरंग लीलाएं कर सकें। तो उसी समय जब ये राधा रानी बोल रही थी तो उनके वक्षस्थल से एक तेज निकला और वो गौलोक धाम के भूमि पर जाके स्थिर हो गया, और उसमें से सबकी आंखों के सामने अचानक करोड़ों मील आकाश में गिरिराज गोवर्धन तैयार हो गया, जन्म हो गया उसका। तो भगवान ने उसको गिरिराज नाम दिया। वो करोड़ों मील आकाश में करोड़ों फीट चौड़ा और करोड़ों फीट लंबा था, उसका कैलकुलेशन करके संहिता में दिया है। फिर उसको रोकना पड़ा क्योंकि वो बढ़ते जा रहा था, उसको रोक दिया गया। फिर जब भगवान ने अवतार लेने का तय किया तो भगवान ने गौलोक धाम के 84 करोस हिस्से को श्री जमुना जी और गोवर्धन के साथ में पृथ्वी पर भेज दिया। तो वो द्रोणाचल नाम के हिमालय के अंदर जो पर्वत है उसके पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। पुलस्त्य मुनि ने उनको उठाया और जब यहाँ पर लाए, काशी के रास्ते पर जा रहे थे वो, यहाँ पर लाए तो गिरिराज जी ने शर्त रखी थी कि जहाँ पर नीचे रखेंगे वहीं हम बैठ जाएंगे। तो उनको लघु शंका का वेग आया तो तब झट से वो गिरिराज को नीचे रख के चले गए। वापस आए तो गिरिराज जी नहीं उठे। उन्होंने कहा था मैंने तो जो वचन दिया था वो तो मैं पालने को तैयार हूँ, लेकिन आपने हमारी शर्त मंजूर की थी, इसके अनुसार आपने मुझे यहाँ रख दिया, अब मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। तो पुलस्त्य मुनि ने उनको शाप दिया कि रोज एक तिल के आकार से आप जमीन में धंस जाओगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि पुलस्त्य मुनि योगी थे, और योगी लोग जो होते ना वो 9 रूप में अपने आप को विभाजित कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 9 जो रूप होते हैं उनके वो एक ही एक्शन करते हैं, ऐसा करेंगे तो सारे 9 ऐसे करेंगे। लेकिन भगवान जब रूप लेते हैं अनंत सारे तो हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। रास में जब सब लोगों ने एक ही नृत्य नहीं किया, ऐसे 1 2 3 4 सब अपने अपने नृत्य में मग्न थे। तो योग का जो बल है, भक्ति का बल योग के बल से कई गुना श्रेष्ठ है। गोवर्धन के मन में इंतज़ार था कि कब हम वृंदावन धाम जाएंगे। पुलस्त्य मुनि का बहाना मिला तो तुरंत तैयार हो गए, और जैसे ही ब्रजभूमि आई काशी के रास्ते पर तो उन्होंने अपने भक्ति के आवेग की वजह से पुलस्त्य मुनि को लघु शंका का बहुत जोरदार वेग आया। वैसे तो योगी लोग ये सारे वेगों को नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन इस बार इनको तो विचार करने का भी मौका नहीं मिला कि मैं इसको नियंत्रण कर सकता हूँ, वैसे भागे। इसका मतलब भक्ति का वेग इनके योग के वेग से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वो पुलस्त्य मुनि हार गए और गिरिराज गोवर्धन अपने इच्छित स्थान पर अपने आप को स्थापित कर सके। तब से वो जमीन में धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर सत्ययुग में घटना हुई है, सत्ययुग गया, फिर द्वापर में जब प्रभु रामचंद्र का ब्रिज बन रहा था सेतु, तो उसमें वो लोग, उनको बहुत टाइम लिमिट था कि जल्दी जल्दी बांधना है उसको। सीता जी ने कुछ एक बड़ा कैलकुलेशन दिया था कि अगर इतने इतने समय में इतना इतना कार्य नहीं हुआ और आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि बहुत समय हो चुका था। 1 साल वो रावण के अशोक वाटिका में रही, तो बहुत ही क्या कहते हैं उसको डेस्परेट होकर उन्होंने ये संदेश भेजा था हनुमान जी द्वारा कि ऐसे समय के अंदर आप नहीं आएंगे तो मैं जीवन को नहीं चला सकती हूँ। इसलिए उनके पास, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था जल्द से जल्द बनाना, इसलिए हनुमान जी को बड़े से बड़े चट्टान और पर्वत वो खोज रहे थे। तो लास्ट में 7 कोस का गैप रह गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई 7 पर्वत लाने के बदले में 1 ही पर्वत लेके आता हूँ तो काम टाइम बचेगा। तो ढूंढ रहे थे तो उनको गोवर्धन नजर आए, तो कितना उनका विस्तार है देखने के लिए वो ऐसे एक दिशा में उड़ने लगे। तो गिरिराज गोवर्धन आगे आगे बढ़ने लगे, तो उनको जितने आगे गए उतने गिरिराज आगे आगे बढ़ रहे, तो उनको लगा कि इधर जाते हैं, तो इधर गए तो इधर भी गिरिराज जी आगे 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 बढ़ने लगे। तब हनुमान जी समझ गए कि वे दिव्य विभूति हैं। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और पूछा कि आपका परिचय क्या है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं गोवर्धन हूँ, भगवान का भक्त हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत संक्षेप में उनको प्रसंग बताया कि कैसे प्रभु रामचंद्र आए हैं और उनको ये सेतु पूरा करना है। तो जो हनुमान से पूरे बल के द्वारा उठ नहीं सके वो तुरंत उठ गए, एकदम हल्के, एकदम बच्चों की तरह उठ गए। और आकाश में जब उड़े तो आकाशवाणी हुई कि सेतु बंध जो है वो पूरा हो गया है, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो वापस नीचे आके रख दिया। तो गिरिराज गोवर्धन बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए कि एक पूरा सत्ययुग और दूसरा ऑलमोस्ट त्रेतायुग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। इतना कमी, करीब करीब 29 लाख साल वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद में एक मौका मिलता है, वो भी ऐसे आंखों के सामने चला जाता है। बहुत बहुत रोते हैं। तो हनुमान जी उनका जो रोना है वो देखकर बड़े अचंभित हो जाते हैं, कैसी भक्ति है। तो फिर प्रभु रामचंद्र को जाके सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त मुझे मिले थे, ऐसा ऐसा लीला हुआ। उनका रोना देखकर मैं बहुत दंग रह गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा परम भक्त है वो, उसको ये सब हमारा काम समाप्त होगा तो जाकर बताना कि मैं अगले युग में आऊँगा तो इन्हीं के इर्द गिर्द बहुत सुंदर सुंदर अंतरंग लीला करूँगा और इन्हीं को उठाऊँगा, मेरे सर पे धारण करूँगा। जो मौका अभी नहीं दिया गया है वो मेरे सर पे उनको मैं 7 दिन 7 रात तक धारण करूँगा। तो ब्रजवासी बोलते हैं, ब्रजवासी बोलते हैं ब्रजवासी पंच, हाँ हरे कथा में उनका एक पंच होता है। वो कहते हैं 7 कोस का गैप था इसलिए भगवान ने उनको 7 दिन 7 रात सर पे धारण किया, छत्री के रूप में अपने ऊपर स्थान दिया उनको। उसके बाद में भगवान, आप जानते हैं ना, भगवान ने इंद्र की पूजा कैंसिल करवाई, फिर गिरिराज की पूजा कराई। तो उस पूजा के समय सबसे पहला जो परिक्रमा है वो स्वयं भगवान ने दिया है। गिरिराज का परिक्रमा की प्रथा जो है सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अपने नेतृत्व में सारे ब्रजवासियों को लेकर किया। उसके बाद में वो स्वयं गोवर्धन बने, उन्होंने सारा भोग खाया। उसके बाद में जब भयंकर वर्षा हुई तो भगवान ने उसको अपने शीश पे उठाया। जब उनको बहुत भयंकर वर्षा हो रही थी, सब भयंकर आतंक ब्रज में मच गया था, संवर तक बादल वर्षा कर रहे थे, तो उस समय भगवान को उन्होंने पुकारा सब लोग ने। भगवान बोले चलो मेरे साथ। तो भगवान उनको पेठा गांव में ले गए, प्रविष्ट वन में। प्रविष्ट वन में एक गुफा है, उसमें भगवान ने प्रवेश किया और उसमें से जाकर गिरिराज को उठाया। उसको उठाने के पहले ग्वाल बालों ने उनको पूछा कि अब क्या करने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको उठाने वाला हूँ। समझो आपका कोई बालक है छोटा सा, बोलेगा कि मैं इसको उठाऊंगा तो क्या लगेगा आपको? तो ये तो मजाक की बात है। तो उन्होंने उनको यकीन दिलाने के लिए एक कदम का पेड़, विशाल कदम का पेड़, जैसे हम कपड़े निचोड़ते ना वैसे उसको निचोड़ दिया सबके सामने। तो वो देखकर ग्वाल बालों को विश्वास हुआ कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। फिर सबके आंखों के सामने वो गुफा में गए, प्रविष्ट मतलब प्रवेश किया उन्होंने उसमें और उसको उन्होंने ऊपर उठाया, 7 दिन 7 रात रखा। सब ब्रजवासी प्यास, भूख, निद्रा, सब प्रकार के वेग सब भूल गए। वो किसी ने कुछ भी नहीं बोला कि नींद आ रही है, थक गए हैं, अभी कभी तक चलेगा ये। कारण क्या है उसका? उसका कारण भगवान का सौंदर्य। 64 कलाओं में से जो लास्ट 4 कलाएं हैं वो भगवान के लिए एकदम एक्सक्लूसिव हैं, केवल उनके पास में। वो एक सौंदर्य है उनका रूप माधुरी, एक है वेणु माधुरी, एक है प्रेम माधुरी और एक है लीला माधुरी। ये जो 4 माधुरियां हैं ये किसी विष्णु अवतार में किसी भी रूप में ये 4 माधुरियां उतनी मात्रा में किसी भी अवतार में नहीं है। तो उनके रूप माधुरी की वजह से ऊपर से रूप वैसे भी खड़े रहेंगे तो मधुर है, उनका परम मधुर है, लेकिन साथ साथ वो त्रिभंग अवस्था में खड़े हैं, साथ साथ एक हाथ से अंगुली से गोवर्धन को उठाए हुए हैं और साथ साथ मुरली भी बजा रहे हैं, ऐसा उनका अद्भुत सौंदर्य था। इसलिए 7 दिन 7 रात सारे सुध-बुध भूल कर सारे ब्रजवासी अपने आँखों के प्याले के द्वारा उनका रूप अमृत पान कर रहे थे। अगर इंद्र जो है वो 700 दिन या 7000 दिन भी वर्षा करते तभी भी वो ऐसे रहते, उनको उल्टा लग रहा था कि ख़त्म क्यों हुआ, वाई इट एंडेड। क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि सब प्रकार की लीला करते हैं तो एक रस प्रधान होता है उसके अंदर। जैसे ग्वाल पोखरा गए तो सख्य रस प्रधान है, वहाँ पर गोपियों को मिलता है तो श्रृंगार रस प्रधान है, घर में वात्सल्य रस है, लेकिन गोवर्धन के नीचे 7 दिन की लीला में सारे रसों का एक साथ में सुंदर मिश्रण का जो प्रकट्य है वो सबको प्राप्त हुआ। सब लोगों ने सारे रसों का एक साथ आस्वादन किया। तो उसके बाद में जब इसकी फुल स्टॉप कैसे हुआ, जब इंद्र हार गए, उनके संवर्तक बादल का पानी खत्म हो गया, तो फिर वो वर्षा बंद हो गई, इसलिए लीला भी समाप्त हो गई। उसके बाद इंद्र आए और इंद्र ने माफ़ी मांगी भगवान से, लेकिन भगवान ने उनको देखा भी नहीं। फिर वो बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति ने उनको किसी भक्त का सहारा लेने को कहा। फिर वो सुरभि गाय के पास आए, उनके चरणों में गिरे, सुरभि गाय ने भगवान से सिफारिश की। फिर उनके ओर भगवान ने पहली बार देखा, फिर उन्होंने बहुत प्रार्थनाएँ की, प्रार्थना करके दिल नहीं भरा, इसलिए उन्होंने अभिषेक करने की परमिशन मांगी। फिर भगवान ने परमिशन देने के बाद इंद्र ने अपने सारे देवताओं के राज्यों से सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं लाई, जैसे वायु के तरफ से छतरी, वरुण के तरफ से सिंहासन, ऐसे सुंदर सुंदर बेस्ट वस्तुएं जो उनके धाम में हैं, उनके लोक में हैं, वो सब मंगाई। और आकाशगंगा का जल ऐरावत के सुंड से लाया, और सुरभि ने अपना दूध से उनका अभिषेक किया। आकाशगंगा का जल सुरभि का दूध से अभिषेक किया। वो अभिषेक जब हुआ तो जो जल एकत्र हुआ वो गोविंद कुंड नाम के कुंड में जमा हो गया। और तभी इंद्र ने ये ऐलान किया, घोषणा की कि आज से इनका नाम गोविंद है। गौओं के रक्षक, इंद्रियों के रक्षक और भूमि के रक्षक, तो उसका नाम गोविंद कुंड पड़ा। और राधा गोविंद जी का विग्रह भी वहाँ पर अभी स्थापन है। तो इस प्रकार से ये संक्षेप में आपको लीला बताई मैंने। इसमें हमको सीखना इतना ही है कि भगवान के सामने कभी गर्व नहीं करना चाहिए। भगवान उस गर्व को चकनाचूर कर देते हैं, टू मच एम्बेरसमेंट। इसलिए ये जानना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वो सब भगवान ने दिया हुआ है। कभी भी हमको भगवान के द्वारा प्राप्त जो शक्तियाँ हैं उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी का दिया हुआ उधार माल है। हाँ, जो बोरो किया हुआ बोरोड वेल्थ है उसके ऊपर कोई गर्व नहीं करता है। जब मैं समझो मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, आपको लगेगा प्रभु जी ने मर्सिडीज खरीद लिया, लेकिन वो तो वृषभानु प्रभु से मैंने बोरो किया 2 दिन के लिए, तो फिर वो मैं किस क्यों गर्व करूँगा उसके ऊपर, मेरा वो है ही नहीं, 2 दिन के बाद देना पड़ेगा लौट के। उसी प्रकार से इंद्र को भी इतना शक्ति भगवान ने दिया, लेकिन वो उस शक्ति के प्रभाव में भगवान को भूल कर इतना मस्ती उनके अंदर आ गई कि वो भूल गए कि ये भगवान है। जब उन्होंने देखा कि उनकी सर्वोच्च शक्ति भगवान ने अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से परास्त कर दी, वो भी हंसते हंसते, ऐसा नहीं कि पसीने आ रहे, बहुत मसाज किया जा रहा है और उनको टॉनिक दिया जा रहा है, फिर वो बहुत मुश्किल से 7 दिन तक, वो कैसे वो होते ना पहलवान लोग दंड का वो करते हैं ना प्रतियोगिता, तो जब 100 हो जाते हैं फिर 101 फिर 102 करके तुम बाद में खुद गिर जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कष्ट नहीं किया। बहुत आराम से इतना आनंद ले रहे हैं सब लोग, सब लोग देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं आनंद से, कोई कष्ट नहीं, कोई श्रम नहीं, कुछ पसीना नहीं, आनंद ही आनंद चल रहा है। तो उनको समझ में आया कि मेरी सर्वोच्च शक्ति जो प्रलय शक्ति है उसको भगवान ने अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से परास्त कर दिया। और गिरिराज गोवर्धन, मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल इस छोटी सी उंगली के केवल अग्रभाग के स्पर्श से गिरिराज गोवर्धन को अमर्याद शक्ति प्राप्त हो रही थी। इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि उनको इतना बड़ा आतंक जो इंद्र के वर्षा का हुआ उसका जरा भी तनिक भी उसको परिणाम उन पर नहीं हुआ। मतलब दुख तो हो रहा था लेकिन आनंद इतना था कि दुख का अनुभव नहीं हुआ उनको। फिर भगवान ने नीचे रखा उनको। मुझे अभी एक कथा याद आ रही जो बिल्कुल बताना जरूरी है आपको। वो जो पेठा गांव है जहाँ पर प्रविष्ट वन है, उधर प्रविष्ट गुफा के पास में थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है आपको। जब भगवान ने अपना अवतार समाप्त किया तो उनकी साक्ष्य लीला करने की जो भूख थी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई, तो वो गोपाल जी के रूप में प्रकट हो गए, जो माधवेंद्र पुरी ने जिनको प्रकट कराया, उनको स्वप्न दिया भगवान ने। फिर उनको उत्खनन करके माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी को गिरिराज के ऊपर स्थापन किया। तो गोपाल जी जब आए तो गोपाल जी की लीला में कैसा है कि कृष्ण की लीला में केवल कृष्ण कृष्ण ही थे ना चलते फुरते, लेकिन गोपाल की लीला में नाथ जी श्रीनाथ जी महाराज की लीला में वो किस कुछ समय के लिए मूर्ति स्वरूप, कुछ समय के लिए चलायमान ऐसे थे, कुछ समय बालक बनते थे और खेलते थे, तो कुछ समय मूर्ति बन के विग्रहों की पूजा स्वीकारते थे। तो उनके इस लीला में उनके 12 भक्त हुए हैं, उनको 8 भक्त हुए हैं, उनको अष्ट छाप कहते हैं। जैसे राधा रानी के अष्ट सखियाँ हैं, कृष्ण के भी अष्ट सखा हैं, लेकिन ये जो अष्ट छाप है ये दूसरे लोग हैं। तो इसमें सूरदास भी आते हैं, एक आते हैं कुंभन दास जी, एक आते हैं चतुर्भुज दास जी, ऐसे उनके बहुत पदवियां हैं उनको, सूरदास को सागर कहा गया है, सूर सागर। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उनका लीलाएं हैं। उसमें एक लीला ऐसी है कि हमारे जो कुंबन दास जी हैं, वो एक बार प्रविष्ट वन में ध्यान लगाकर बैठे थे। सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान लगाकर बैठे थे। उनको ध्यान में एक दृष्टांत हुआ उनको। उनको एक कदम का पेड़ दिखा और कदम के पेड़ में उनको एक मटका दिखा जिसमें मक्खन था। फिर उनको कृष्ण भगवान दिखाई दिए, श्याम सुंदर जी। और श्याम सुंदर जी क्या कर रहे थे, वो डाली पर लटक कर उसमें से माखन खा रहे थे। दो हाथ है ना उनके, एक हाथ पे डाली पे लटके हुए हैं, एक हाथ से माखन खा रहे हैं। बहुत उत्कट लीला है, बहुत मजे से हंसते हंसते दिख रहे थे उसको आंख बंद करके। अचानक क्या हुआ कि जो एक हाथ डाली पर लटकते हुए एक हाथ से खा रहे थे, उस श्याम सुंदर जी की जो धोती का पीछे का जो हिस्सा है ना, जो हम लोग डालते हैं ना, वो छूटने लगा। अभी धोती कुछ समय के बाद छूटेगी, गिर जाएगी, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको, अगर आप चन्नैया कन्हैया की जगह पर होते तो क्या करते? एक हाथ से, लेकिन वो गिर जाएंगे ना ऊपर। एक हाथ, दो ही हाथ है ना, एक हाथ पे लटके हुए हैं, एक हाथ से मक्खन खा रहे हैं, धोती कैसे मार बांध देंगे? सब लोग दिमाग लगाओ, बड़े बुद्धिमान लोग डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, धोती छूट जाएगी तो इट विल नॉट बी नाइस ना, धोती नहीं छूटनी चाहिए ना। तो उन्होंने सारे काम एक एक साथ ही करने का विचार किया कि कोई काम में बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनकी क्या है, उनकी विशेषता क्या है कि वो मग्न है मक्खन खाने में, उनको अपनी मक्खन खाने के मग्नता में बाधा लानी नहीं है। तो क्या हुआ, उनके पीछे के कंधे से दो हाथ बाहर आए, ऐसे पीछे गए, धोती को अच्छी तरह बांधा, वापस अदृश्य हो गए और मक्खन खाने की क्रिया चालू ही रही। यू हैव टू थिंक फ्रॉम किडनीज नॉट फ्रॉम ब्रेन, तो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सो IAS क्वेश्चन इस लीला के माध्यम से IAS में आया था वो। तो ये जो ध्यान देखकर वो कुम्भनदास जी हंस रहे हंस रहे हंसते जा रहे, तो कुछ दिन बाद उनकी पत्नी को पुत्र हुआ, तो उसका नाम उसने क्या रखा, चतुर्भुजदास। उसके चिंतन में जो दर्शन किया था उसने, श्री कृष्ण भगवान का नाम चतुर्भुजदास करके अपने बालक को रखा। तो उसको कहते थे मजाक में, कुंभना के, ए कुंभना के, मतलब ए नंद के, मतलब नंद के पुत्र, ऐसे ए कुंभना के ऐसे बोलते थे। तो चतुर्भुज के लिए श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी प्रेम था उनके ऊपर, तो उनके साथ में हमेशा वो प्रत्यक्ष लीला करते थे। मतलब चतुर्भुज दास को वो दिखाई दिख रहे हैं, वो खेलते हैं उनके साथ में, लेकिन जब चतुर्भुज दास जी को जब दिखते हैं वो दुनिया को नहीं दिख रहे हैं, समझो मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये अदृश्य हैं और मैं, मुझे दिख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ उनसे, तो आपको क्या लगेगा विष्णु दास पागल हो गए बोले दीवार से बात कर रहे कोई है तो नहीं, और ऐसे बात कर रहे कोई बैठे हैं ऐसे प्रेम से बात कर रहे हैं। तो लोगों को लगता था कि कुंभना के चतुर्भुज दास बड़े पागल हैं, मतलब एक विचित्र लड़का है ये, पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि किसी को दर्शन नहीं होता था। वो कुंभना के पुत्र चतुर्भुज को वो सब दर्शन होते थे। तो एक बार वो मंदिर में आए और ठाकुर जी तुरंत मूर्ति से बाहर आए, चलो चतुर्भुज खेलते हैं। हाँ ठाकुर जी क्या करेंगे आज? वो बोलते हैं कि आज ना आप घोड़ा बनो और मैं ऊपर बैठ के सवारी करूँगा। तो कुंभना कुंभना के पुत्र चतुर्भुज दास जो है ना, घोड़ा बने और अदृश्य श्रीनाथ जी उस पर बैठ गए और पूरा मंदिर घुमा रहे, हेट हेट करके डंडे से मार रहे, और वो सब यहाँ से ले लो, लेफ्ट रहो राइट रहो, गोल घूमो, यू टर्न ले लो, ऐसे करके चल रहा है उनका। और मंदिर में लोग देख रहे हैं, तो पागल ही है बेचारा, क्या है इसको, क्या समझाया अभी, ये पागल लड़के को क्या करेगा? कई बार चर्चा हो चुकी है लेकिन कुछ सुधारण सुधार तो नहीं होता है। उतने में बहुत देर ठाकुर जी ने घुमाया तो बेचारे का ब्लैडर फुल हो गया। हाँ, उसको मूत्र वेग आया, तो उसने कहा अरे श्याम सुंदर जी क्या करूँ, अभी वेग आ रहा है। बोला अच्छा, अभी घोड़ा बने हो तो घोड़े की तरह करो। थोड़ी घोड़ा को ब्रेक मिलता है, टाइम प्लीज थोड़ा होता है, घोड़ा अपनी तरफ से जो करना है वो करते रहता है, उसका भी मग्नता है, वो थोड़ी बीच में बाधा लाता है अपनी सेवा में। तो उन्हें कहा नहीं नहीं लोग लो हंसेंगे मुझे, कोई बात नहीं। बोला आप घोड़ा बने हो तो पूरी तरह से घोड़ा बनो, आधा आधा मत बनो। तो फिर इतना वेग ज़्यादा हो गया था, तो वो काफ़ी बहस करने का समय नहीं था उनके पास में, तो चालू किया उन्हें अपना। हाँ, तो अभी तो मतलब मराठी में कहर झाला, कहर मतलब इज टू मच यू नो। तू मच हो गया अभी मंदिर के प्रांगण में, ये तो पहले से पागल की हरकतें कर रहा है, ऊपर से अभी सब जगह धार मूत्र की, सब जगह मंदिर में पूरा अपवित्र कर दिया, सब लोग चिल्लाए उसके ऊपर, उसको मारने लगे आकर। तो जब मारने लगे तो ठाकुर जी उसके घोड़े से ऊपर से उतर गए, ताली बजा के पिटनी हंसने जोर जोर से हंसने लगे और ये मार खाने लगे। तो ये बोल रहे क्यों ऐसा कर रहे हो, हंस रहे हो, मुझे तो पीट रहे हैं। तो उनको और लगे कि और ही पूरा ही पागल हो गया है। तो फिर कुंभना को बुलाया तुरंत, बोला बहुत गड़बड़, बहुत गंभीर मामला, अभी तो इसका हम लोग ये पागलों की हरकतें हम लोग सहन नहीं करेंगे, अभी इसको आज से मंदिर में आना बंद। तो बड़ा दुख हुआ, कुंभना को भी हुआ और इनको भी हुआ कि मेरे प्रियतम सखा को अब मैं मिल नहीं पाऊंगा। उस समय वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, विट्ठलनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी, उनको रूप रघुनाथ गोस्वामी ने गोपाल जी का सेवा सुपुर्द किया था। वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे और रघुनाथ गोस्वामी दास गोस्वामी उनको जानते थे अच्छी तरह से, तो उन्होंने गोपाल जी का सेवा जो था वो इनके हाथों में दिया था। वो प्रमुख पुजारी थे श्रीनाथ जी के। तो रात में शयन करते समय श्रीनाथ जी विट्ठलनाथ जी से, विट्ठलनाथ जी क्या बताया आपको मैंने, विट्ठलनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी, तो विट्ठलनाथ जी से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि देखो तुमने इतना कठोर निर्णय ले लिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सब लीला किया था उसके साथ में, तो कभी भी आप उसको मंदिर में आना बंद नहीं कर सकते हैं। तुरंत वो भाग के गए कुंभना के घर पे और चतुर्भुज की कुंभना की उन्होंने माफ़ी मांगी। एक और भी लीला है, कभी प्राइवेट में बताऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ नहीं बता सकता उसको, थोड़ा उसका आगे का स्टेप है। तो ऐसे ये अष्ट छाप जो थे उन्होंने बहुत भगवान को आनंद दिया, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद दिया। तो ऐसे हमारे गिरिराज जी के तलेटी में बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं। वहाँ पर चंद्र सरोवर है पेठा में, जहाँ पर वसंती रास, मैंने सुबह बताया ना आपको, गुलाबी मंदिर ढोका दाऊ जी चंद्र सरोवर निर्माण हुआ, वो भी बड़ी परिक्रमा में है, 40 किलोमीटर की परिक्रमा है जो सनातन गोस्वामी करते थे। तो गिरिराज की परिक्रमा जो है ये ठाकुर जी के द्वारा शुरू की गई है, और उनकी परिक्रमा का अर्थ है कि वो उनके चरणों की सेवा है। जब लोग चलते हैं उनके इर्द गिर्द परिक्रमा के रूप में, तो उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। और पूरे विश्व में आध्यात्मिक जगत में ये गिरिराज की परिक्रमा बहुत फेमस है, सब लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे कामतगिरी है हाँ चित्रकूट में, वैसे यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन सबको भक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आप लोगों का बड़ा भाग्य है, गिरिराज जी का दर्शन जो है 24 घंटे खुला रहता है, कोई शयन, कोई उत्थापन, कोई मंगला आरती ऐसा कुछ नहीं होता है, सब 24 घंटे खुले रहते हैं। कभी भी आप आओ दर्शन करो उनका। और ये अनियोर गाँव है, यहाँ से ये आश्रम जहाँ से, यहाँ से लेकर करीब करीब 2 किलोमीटर आगे तक अनियोर गाँव है, और वो अनियोर गाँव में 1.5 किलोमीटर तक सारे अन्नकूट भोग लगाए गए थे। इतने भोग लगाए थे कि 2 भोगों के बीच में कुछ भी जगह नहीं थी, और बड़े बड़े पर्वत, कितना उन्होंने भोग लगाया होगा, कितना विशाल भोग लगाया गया, और सारे विशाल भोग को भगवान ने एक ही झटके में एक रास में खा लिया। फिर क्या बोले वो, अनियोर अनियोर अनियोर, फिर उसको दोबारा प्रकट किया और सबको बांटा उन्होंने। बहुत सुंदर लीला है ये लीला जो है ना, इसमें आनंद ही आनंद है। इसमें कहीं से भी प्रवेश करो आप, बीच में प्रवेश करो, आगे जाओ पीछे जाओ, सब इसके अंगों में आनंद ही आनंद है। बाकी कुछ में राक्षस है, डर है, कुछ अलग इमोशन एक्शन सब है उसके अंदर, लेकिन इसमें आनंद ही आनंद है। कभी भी आप देखो उस लीला को, पढ़ो सुनो देखो श्रवण करो देखो वीडियो में, हैप्पीनेस इज गारंटीड। तो अभी आपको मैं विनती करता हूँ कि आप सीढ़ियाँ ढूँढिए और इन सब के ऊपर चले जाइए, वह गिरिराज जी का बहुत सुंदर दर्शन यहाँ से जो प्राप्त है उसको करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।